कमरे में संगीत अभी भी बज रहा था और आस्तिक अरुणिमा की तरफ बढ़ रहा था। अरुणिमा को अपने बचाव के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया और उसने जल्दी से अपने हाथ खोलकर डांस करना शुरू कर दिया। अरुणिमा का नाच देख आस्तिक के कदम रुक गए और अरुणिमा अपने शरीर को संगीत की बीट पर लहराने लगी। अरुणिमा ने आस्तिक के सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे धकेलते हुए सोफे पर ले गई। आस्तिक एक झटके के साथ सोफे पर बैठ जाता है और अरुणिमा अपना एक घुटना सोफे पर रखते हुए आस्तिक के गले में बाहें डालते हुए डांस कर रही थी। हॉट ड्रेस से दिखती हुई अरुणिमा की बॉडी आस्तिक को आकर्षित कर रही थी और उसका वो हॉट डांस आस्तिक को सिड्यूस करने में कामयाब हो गया था। आस्तिक के पूरे हाथ अरुणिमा के शरीर पर चल रहे थे और अरुणिमा को इस समय बहुत घृणा सी महसूस हो रही थी। हालांकि उसे डांस नहीं आता था, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि वो आस्तिक को सिड्यूस करने में कामयाब रही है। अरुणिमा को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आस्तिक ने अरुणिमा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तो तुम्हें मर्दों को इम्प्रेस करना आता है? अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती रह जाती है और उसके कहे शब्दों का मतलब समझने लगती है। आस्तिक अरुणिमा की आंखों में देखते हुए डेविल स्माइल के साथ कहता है, तुम मुझे सिड्यूस करने में कामयाब रही। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखती रह जाती है और आस्तिक अरुणिमा को गोद में उठाते हुए बिस्तर पर पटक देता है। अरुणिमा डर से पीछे होने लगती है, लेकिन आस्तिक ने उसके पैरों को पकड़ते हुए उसके ऊपर आ जाता है और एक झटके में उसकी ड्रेस को फाड़कर फेंक देता है। अरुणिमा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आस्तिक पूरा मॉन्स्टर बन चुका था। अरुणिमा की चीखें एक बार फिर से उस कमरे में गूंजने लगी थीं और आज तो आस्तिक कल से भी ज्यादा कठोर था। अरुणिमा लगभग बेहोश होने को आई थी, पर शायद आस्तिक को फर्क नहीं पड़ता था कि अरुणिमा होश में हो या बेहोश। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद आस्तिक उठकर बाथरूम जाता है और खुद को साफ करके वापस कमरे में आता है। वो फिर से बेड के पास आते हुए अरुणिमा के हाथों को पकड़कर उसे बेड से नीचे धकेल देता है। अरुणिमा फिर से फर्श पर गिरी हुई थी, लेकिन आस्तिक आज नशे में था और नशे में उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अरुणिमा के शरीर पर कपड़ा नहीं है। अरुणिमा बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी और आस्तिक हल्के लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कमरे से बाहर चला जाता है। हमेशा की तरह वो फिर से अपनी माँ के कमरे में गया था। वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होता है और उस पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे याद है माँ, कैसे हमें एक वक्त की रोटी देने के लिए तुमने पार्टीज में नाचना शुरू किया था। बड़े बड़े रईस लोगों के यहाँ जाकर तुम उनके सामने नाचा करती थीं ताकि तुम्हारे बच्चों को रोटी मिल सके, और आज अरुणिमा ने भी वही किया है। जैसे तुम अपने आत्मसम्मान को मार के लोगों के सामने नाचा करती थीं, वैसे ही आज अरुणिमा ने मेरे सामने डांस किया है। बस तुम देखते जाओ माँ, तुम्हारे साथ हुए हर एक हादसे की कीमत उसकी बेटी कैसे चुकाएगी। उस औरत को भी तो पता चले कि पति के छोड़ने के बाद एक औरत की जिंदगी क्या हो जाती है। बस माँ, तुम थोड़ा सा सब्र रखना और मुझ पर भरोसा रखना, बस कुछ दिन और, उसके बाद शारदा मेहरा अपने सबसे बुरे वक्त को देखेगी। ये कहते हुए आस्तिक अपनी माँ की तस्वीर से अपना सर लगा देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आस्तिक की आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक तरफ तो वो अपनी माँ से अपने मन की बात करके अपना मन हल्का कर रहा था, तो दूसरी तरफ से उसके मन में अरुणिमा की छवि आ रही थी। दूसरी तरफ जैसलमेर व्हाइट विला, सक्षम तलवार अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी एक औरत स्टडी रूम का दरवाजा खोलते हुए कहती है, सक्षम बाबा, सुबह होने को आई है, अब तो सो जाइए। सक्षम मुस्कुराते हुए उस औरत को देखता है और खड़े होते हुए कहता है, काकी, आपसे कितनी बार कहा है मेरे लिए इतनी रात तक मत जगा कीजिए। मैंने आपको मुंबई से यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि आप अपना ख्याल रख सकें, ना कि मेरे पीछे पड़ी रहें। जाइए, जाकर सो जाइए। लेकिन वो औरत अंदर आते हुए उदासी से कहती है, अरे कैसे ना मैं आपका ख्याल करूं? आपके माता पिता आपको मेरे भरोसे छोड़कर गए थे और मुझे कहकर गए थे मेरे सक्षम का ख्याल रखना। उन्हीं के दिए वचनों को निभाते हुए आज तक आपको संभाल रही हूँ, लेकिन अब मेरी भी उम्र हो गई है, इसीलिए तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द आपको संभालने वाली कोई आ जाए ताकि मैं रिटायर हो सकूँ। सक्षम हंसता हुआ अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और काकी के पास आते हुए उनका कंधा पकड़ता है और उन्हें सोफे पर बैठाता है। भले ही मेरे जीवन में कोई भी आ जाए, लेकिन आपके जैसा मुझे कोई नहीं संभाल सकता है। सक्षम खड़ा होते हुए टेबल के पास जाता है और अपना फोन लेते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी जाकर सो जाइए। वैसे भी कल सुबह चाचा जी और चाची आ रहे हैं, मैं उनके आने से पहले ही ऑफिस निकल जाना चाहता हूँ। काकी अपनी जगह से खड़े होते हुए हल्की उदासी के साथ कहती है, तुम्हारे चाचा और चाची भी अजीब प्राणी है, इस दुनिया में खुद की बेटी को तो विलायत में रखा हुआ है और उसकी तरफ देखते भी नहीं है कि वो क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं, और तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। सक्षम मुस्कुराता हुआ उन्हें देखकर कहता है, हो सकता है ये उनके प्यार जताने का तरीका हो, खैर मैंने उनकी बातों का कभी बुरा नहीं माना है। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, आप भी जाकर सो जाइए। ये कहते हुए सक्षम अपने कमरे की तरफ चला जाता है।